एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है सभी श्रोताओं का।
आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद आपको अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। क्या आप वाकई अपनी मर्जी से हाँ कहते हैं या कोई अनदेखा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर आपसे हाँ कहलवा रहा है?
नमस्कार, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी की बहुत ही मशहूर किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन की, हिंदी में कहें तो प्रभाव, समझाने बुझाने का मनोविज्ञान। ये किताब उन छिपे हुए नियमों को खोलती है जिनके जरिए लोग हमें अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं।
और आज के दौर में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ,
मेरा मतलब है विज्ञापन, सोशल मीडिया फीड्स, सेल्स पिच,
हाँ,
यहाँ तक कि दोस्तों रिश्तेदारों की बातें भी। हर तरफ से कोई ना कोई हमें प्रभावित करने की कोशिश में लगा है।
बिल्कुल।
तो ये जानना कि ये सब होता कैसे है, एक तरह से अपनी रक्षा करना है।
एकदम सही कहा। ये किताब उन मनोविज्ञानिक चाबियों की तरह है जिनसे हमारे दिमाग के कुछ खास ताले खुल जाते हैं अपने आप।
अच्छा।
हाँ, और इन्हें समझना हमें न सिर्फ एक ज्यादा जागरूक इंसान बनाता है बल्कि बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन मनोवैज्ञानिक हथियारों को आसान भाषा में समझें, देखें कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं।
तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं लेखक से। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी है कौन और इस विषय पर उनकी बात में ऐसा क्या खास है?
देखिए, डॉक्टर सियाल्डिनी अमेरिका के एक बेहद सम्मानित सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्हें प्रभाव अनुपालन, मतलब किसी की बात मानना, और बातचीत यानी निगोसिएशन, इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिना जाता है। वो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक प्रोफेसर भी रहे हैं।
लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिक होते हैं, सियाल्डिनी की रिसर्च में ऐसी क्या अनोखी बात है जो उनकी किताब को इतना इतना असरदार बनाती है?
उनका तरीका, हाँ, वही सबसे खास है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की लैब में बैठकर थियोरी बनाने वाले प्रोफेसर नहीं है।
बिल्कुल नहीं। अच्छा।
उन्होंने ये समझने के लिए कि असल दुनिया में लोग दूसरों को कैसे मनाते हैं या कैसे अपनी बात मनवाते हैं, उन्होंने 3 साल तक भेष बदलकर गुप्त रूप से काम किया।
अरे वाह, 3 साल!
हाँ, वो उन लोगों के बीच रहे जो रोजाना लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं।
किस तरह का काम किया उन्होंने, मतलब कहाँ गए वो?
वो पुरानी कारें बेचने वाले सेल्समैन बने,
अच्छा,
चैरिटी के लिए सड़क पर चंदा मांगने वालों के साथ जुड़े, टेलीमार्केटिंग कंपनियों में काम किया, विज्ञापन एजेंसियों की ट्रेनिंग ली।
कमाल है।
इसे वो सहभागी अवलोकन कहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इससे उन्हें सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि जिन्हें वो अनुपालन प्रोफेशनल कहते हैं, मतलब वो लोग जिनका काम ही लोगों से हाँ कहलवाना है, वो असल में कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनकी किताब में किताबी ज्ञान और जमीनी हकीकत का एक जबरदस्त मिश्रण मिलता है।
ये तो सच में कमाल का समर्पण है अपने काम के प्रति। तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका इसका मूल विचार क्या है?
देखिए, किताब का केंद्रीय तर्क ये है कि हमारी दुनिया बहुत जटिल है, बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत सारे फैसले हर रोज।
हाँ बिल्कुल।
अब हर छोटी बड़ी बात पर गहराई से सोचने का न तो हमारे पास समय है, न ही दिमागी ऊर्जा, है ना?
सही बात है।
इसलिए हम इंसान अक्सर कुछ बने बनाए मानसिक शॉर्टकट्स, या कह लें कि अंगूठे के नियम, रूल्स ऑफ थंब, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट्स ज्यादातर समय हमारे काम आते हैं, हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं।
जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम हर सेकंड ट्रैफिक लाइट के बारे में नहीं सोचते, वो आदत बन जाती है, कुछ वैसा ही।
हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन यहीं पर एक पेच है। ये शॉर्टकट हमें आलसी और कभी कभी असुरक्षित भी बना देते हैं।
अच्छा, कैसे?
क्योंकि ये जो अनुपालन पेशावर हैं, सेल्समैन, मार्केटर, नेता, यहां तक कि ठग, वो इन शॉर्टकट्स को पहचान गए हैं। वो जानते हैं कि कौन सा मनोवैज्ञानिक बटन दबाने से हमारे अंदर एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
स्वचालित प्रक्रिया?
हाँ, सियाल्डिनी इसे क्लिक विर कहते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाते ही कैसेट अपने आप चलने लगती है।
बिना सोचे समझे?
बिल्कुल, बिना सोचे समझे।
क्लिक विर मतलब हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाता है और हम बिना सवाल किए हाँ कह देते हैं।
एकदम सही। और कई बार ये हाँ हमारे अपने फायदे के खिलाफ भी हो सकती है। सियाल्डिनी ने ऐसे 6 मुख्य प्रभाव के हथियारों की पहचान की है जो इन स्वचालित प्रक्रियाओं को चालू करते हैं।
6 हथियार कौन कौन से हैं वो?
वो हैं पारस्परिकता, रेसिप्रोकेशन, प्रतिबद्धता और संगति, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ, पसंद, लाइकिंग, अधिकार, अथॉरिटी और दुर्लभता, स्कार्सिटी। ये किताब हमें इन हथियारों को पहचानने और इनके जाल में फंसने से बचने के तरीके सिखाती है।
ठीक है, तो ये 6 मनोवैज्ञानिक चाबियां हैं जो हमारे अवचेतन पर असर डालती हैं। चलिए अब एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। पहला है पारस्परिकता, रेसिप्रोकेशन। ये क्या क्या चीज है?
ये लेन देन का नियम है और ये शायद मानव सभ्यता जितना ही पुराना है।
अच्छा,
अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक मनोवैज्ञानिक बोझ आ जाता है कि हम उसका एहसान चुकाएं।
ये भावना इतनी ताकतवर होती है कि हम उस इंसान की मदद करने को भी तैयार हो जाते हैं जिसे हम शायद पसंद भी नहीं करते।
हाँ, ये तो है। जैसे किसी दुकान में घुसते ही सेल्समैन चाय पानी पूछ ले।
हाँ, तो कुछ खरीदने का दबाव महसूस होने लगता है, भले ही कुछ पसंद ना आया हो, या फिर शादी में मिले लिफाफे का हिसाब रखना पड़ता है।
बिल्कुल, ताकि उतना ही या उससे ज्यादा वापस कर सकें। दुकानों में मिलने वाले फ्री सैंपल भी इसी का उदाहरण है।
हाँ, वो भी।
वो मुफ्त सैंपल एक बिना मांगा एहसान पैदा कर देता है, और अक्सर हम इस छोटे से एहसान को चुकाने के चक्कर में कोई बड़ी चीज खरीद लेते हैं। मतलब एक असमान आदान प्रदान हो जाता है। इसी से जुड़ी एक और चालाक तकनीक है, रिजेक्शन देन रिट्रीट।
हाँ, ये सियाल्डेनी का बॉय स्काउट वाला उदाहरण याद आया मुझे। पहले उसने $5 का महंगा सर्कस टिकट बेचने की कोशिश की।
हाँ,
जब सियाल्डेनी ने मना कर दिया तो उसने कहा, अच्छा, अगर आप टिकट नहीं ले रहे तो क्या आप कम से कम ये $1 वाली चॉकलेट बार खरीदेंगे?
और सियाल्डिनी ने खरीद ली।
खरीद ली। क्यों? क्योंकि लड़के ने अपनी मांग कम करके उन पर एक तरह का रियायती एहसान कर दिया था। कितना सूक्ष्म तरीका है
है
ना।
ना, बहुत चालाकी से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मांग कम करना नहीं है, ये सामने वाले को ये महसूस कराना है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी मांग कम की। खैर, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, प्रतिबद्धता और संगति।
हाँ,
ये हमारी अंदरूनी इच्छा है कि हम जो कहते हैं या करते हैं उस पर टिके रहें, या कम से कम टिके हुए दिखें।
कोई भी अपनी बात से पलटने वाला या दोगला नहीं कहलाना चाहता। हमें सुसंगत दिखना पसंद है, कोहेरेंट। ये हमारी इज्जत का सवाल बन जाता है कई बार।
सही कहा। और ये इच्छा तब और ज्यादा मजबूत हो जाती है जब हमारी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट सक्रिय हो, एक्टिव। मतलब हमने कुछ कहा या किया हो, सिर्फ सोचा ना हो,
अच्छा,
सार्वजनिक हो, पब्लिक हो,
हाँ,
और प्रयासपूर्ण हो, जिसमें थोड़ी मेहनत लगी हो, जैसे कुछ लिखना।
अच्छा, इसीलिए शायद आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने फिटनेस गोल या नए साल के संकल्प पोस्ट करते हैं ताकि वो पब्लिक प्रेशर बना रहे।
हाँ बिल्कुल, और सेल्स वाले इसीलिए अक्सर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते हैं, चाहे छोटी सी ही बात क्यों ना हो। लिखने का काम प्रतिबद्धता को बहुत मजबूत करता है। इसी से जुड़ी है फुट इन द डोर तकनीक।
फुट इन द डोर मतलब पहले छोटा कदम।
हाँ, पहले आपसे एक छोटी सी मामूली सी हाँ करवाई जाती है। इससे आपकी अपनी नजर में आपकी छवि थोड़ी बदल जाती है। हाँ, मैं इस तरह का इंसान हूं जो ऐसे काम करता है।
अच्छा,
फिर उसी से जुड़ी एक बड़ी मांग रखी जाती है, और आप अपनी उस नई छवि के साथ सुसंगत रहने के लिए उस बड़ी मांग को भी मान लेते हैं।
इसका कोई ठोस उदाहरण है किताब में? कुछ याद है?
हाँ, सियाल्डिनी कोरियाई युद्ध का जिक्र करते हैं। चीनी कम्युनिस्टों ने अमेरिकी युद्धबंदियों से सहयोग हासिल करने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था, बहुत चालाकी से।
कैसे?
उन्होंने कैदियों से सीधे बड़े देशद्रोही बयान नहीं लिखवाए, पहले उनसे छोटी छोटी, लगभग हानि रहित अमेरिका विरोधी बातें लिखवाईं, जैसे अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट नहीं है।
अच्छा, बस इतना?
हाँ, एक बार जब कैदी ने ये लिख दिया तो वो अपनी नजर में थोड़ा बदल गया। फिर धीरे धीरे उनसे और बड़े बयान लिखवाए गए, और वो लिखते गए ताकि वो अपने पिछले कामों के साथ सुसंगत दिखें।
बाप रे, ये दिखाते हैं कि छोटी सी शुरुआत कितनी कितनी खतरनाक हो सकती है।
बिल्कुल, वाकई ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे धीरे धीरे किसी को अपनी ही सोच के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। खैर, चलिए अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ।
सामाजिक प्रमाण, इसका मतलब है कि हम ये तय करने के लिए कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, दूसरों को देखते हैं। भेड़चाल कह सकते हैं इसे।
कुछ हद तक हाँ, खासकर तब जब हम खुद अनिश्चित होते हैं कि क्या करें, या जब स्थिति अस्पष्ट होती है, तब हम सोचते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं,
हाँ,
और हम उन लोगों की नकल करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं।
अच्छा, जैसे टीवी कॉमेडी शो में वो नकली हंसी डाली जाती है।
हाँ, वो इसी का क्लासिक उदाहरण है। वो हंसी हमें बताती है कि यहां हंसना है, भले ही जोक मजेदार न हो।
और वो किटी जेनोवीज वाला भयानक मामला भी, जिसमें न्यूयॉर्क में कई लोगों ने एक महिला पर हमला होते देखा लेकिन किसी ने पुलिस को फोन तक नहीं किया।
हाँ, उसे बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हर कोई सोचता है कि शायद कोई और मदद कर देगा, या फिर वो दूसरों को शांत देखकर ये मान लेते हैं कि शायद मामला इतना गंभीर नहीं है।
मतलब हर कोई दूसरे से संकेत ले रहा होता है।
हाँ, और नतीजा ये होता है कि कोई कुछ नहीं करता। इसी तरह जब कोई मशहूर हस्ती आत्महत्या करती है तो उसके बाद आत्महत्या की दर में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसे वर्दर इफेक्ट कहते हैं।
अरे हाँ,
लोग दूसरों के व्यवहार से दुखद व्यवहार से भी सीखते हैं। ये आजकल ऑनलाइन ट्रेंड्स या वायरल चुनौतियों में भी नहीं दिखता।
हाँ बिल्कुल दिखता है, हर कोई वही कर रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, पसंद, लाइकिंग। ये तो काफी सीधा लगता है, हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं।
बिल्कुल। सवाल ये है कि हम लोगों को पसंद क्यों करते हैं? सियाल्डिनी इसके कई कारण बताते हैं।
जैसे
पहला, शारीरिक आकर्षण, खूबसूरती। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। हम अनजाने में ही खूबसूरत लोगों को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा ईमानदार मान लेते हैं। दूसरा, समानता, सिमिलैरिटी। जब हमें लगता है कि कोई हमारी तरह ही है, चाहे सोच में हो, बैकग्राउंड में हो, हम उसे ज्यादा पसंद करते हैं।
सही।
तीसरा, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट्स। हमें अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि जब हमें पता हो कि वो चापलूसी है, तब भी असर करती है।
हाँ ये तो है।
चौथा, संपर्क और सहयोग। जिन लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं या मिलकर किसी साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं, हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। और पांचवा, कंडीशनिंग या जुड़ाव। हम चीजों को उन लोगों या भावनाओं से जोड़ लेते हैं जो उनके साथ जुड़ी होती हैं।
अच्छा, जैसे विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल।
बिल्कुल
हम सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो प्रोडक्ट को भी पसंद करने लगते हैं।
बिल्कुल, हम सेलिब्रिटी के प्रति अपनी पसंद को प्रोडक्ट से जोड़ लेते हैं।
किताब में टपोवे पार्टी का उदाहरण दिया गया है, वो तो इन सब का एक तरह से मिश्रण लगता है।
हाँ,
मेजबान आपकी दोस्त होती है, पसंद। पार्टी में गेम्स और इनाम होते हैं, पारस्परिकता। आप दूसरे मेहमानों को सामान खरीदते हुए देखते हैं, सामाजिक प्रमाण। और लोगों को अपने अनुभव बताने के लिए कहा जाता है, प्रतिबद्धता। ये तो पूरा पूरा मनोवैज्ञानिक जाल है।
आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत अकेले नहीं बल्कि मिलकर ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। चलिए पांचवें सिद्धांत पर चलते हैं, अधिकार, अथॉरिटी।
अधिकार।
हम बचपन से ही सीखते हैं कि सत्ता या अधिकार का सम्मान करना और उनकी बात मानना सही है। माता पिता, शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर।
हाँ, और हम अक्सर उनकी बात पर सिर्फ इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो अधिकारी हैं, है ना? भले ही हमें उनकी बात पूरी तरह समझ ना आई हो, हम मान लेते हैं कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं।
बिल्कुल।
आजकल ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के साथ भी तो यही होता है। किसी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया या एक्सपर्ट लिख दिया तो हम मान लेते हैं कि वो सही कह रहा होगा।
बिल्कुल, और सिर्फ असली अधिकारी नहीं, उसके प्रतीक सिंबल्स भी उतना ही काम करते हैं। जैसे किसी का टाइटल, प्रोफेसर, जज, सीईओ,
हाँ।
उनके कपड़े, वर्दी, महंगा सूट, या उनकी महंगी चीजें, बड़ी कार, आलीशान ऑफिस, ये सब अधिकार का आभास कराते हैं। इसका सबसे सबसे डरावना उदाहरण है स्टैनली मिलग्रैम का मशहूर प्रयोग।
हाँ, वो भयानक प्रयोग जिसमें सामान्य लोगों ने सिर्फ एक लैब कोट पहने वैज्ञानिक के कहने पर दूसरे व्यक्ति को बिजली के झटके दिए।
जो असल में एक्टर था।
हाँ, और झटके बढ़ाते गए, यहाँ तक कि जब वो चीखने चिल्लाने लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। ये दिखाता है कि अधिकार के आदेश का पालन करने की हमारी प्रवृत्ति कितनी गहरी और खतरनाक हो सकती है।
बिल्कुल। और अब आते हैं छठे और आखिरी हथियार पर, दुर्लभता, स्कैर्सिटी। सीधी सी बात है, जो चीजें कम होती हैं या मुश्किल से मिलती हैं, वो हमें ज्यादा कीमती और आकर्षक लगती हैं।
आखिरी मौका, लिमिटेड एडिशन, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ दो पीस बचे हैं।
ये सब,
हाँ बिल्कुल।
यही सब। इसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण है, हमें कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा कुछ खोने का डर, लॉस अवर्जन, वो प्रेरित करता है। और जब हमें लगता है कि हमारी कोई चीज चुनने की आजादी छिन रही है, जैसे कोई चीज खत्म होने वाली है, तो हम उसे और भी ज्यादा पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इसे सियाल्डिनी साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं।
अच्छा, इसका एक दिलचस्प उदाहरण वो रोमियो और जूलियट प्रभाव है। मतलब जब माता पिता किसी रिश्ते का विरोध करते हैं तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है।
बिल्कुल, क्योंकि वो रिश्ता दुर्लभ और प्रतिबंधित हो गया है, इसलिए वो ज्यादा आकर्षक लगने लगता है।
सही।
इसी तरह जिस जानकारी को सेंसर या प्रतिबंधित किया जाता है, लोग उसे जानने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। नीलामी में चीजों की कीमतें आसमान क्यों छूती हैं?
हाँ?
क्योंकि वो चीज दुर्लभ है और उसके लिए होड़ मची है। ये सब दुर्लभता के सिद्धांत का ही खेल है। सोशल मीडिया पर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी शायद इसी से जुड़ा है।
हाँ, लगता तो है। तो ये थे प्रभाव के वो 6 अचूक हथियार। अगर हम इस किताब के मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो क्या निकल कर आता है? पहली बात तो यही लगती है कि हमारे मानसिक शॉर्टकट्स,
हाँ,
ह्यूरिस्टिक्स, जो हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं,
वही हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं।
हाँ, वो दोधारी तलवार की तरह हैं।
सही।
दूसरा अहम संदेश ये है कि हमारा ज्यादातर व्यवहार, जब हम किसी की बात मानते हैं, वो स्वचालित और अचेतन होता है। ऑटोमेटिसिटी एंड माइंडलेस कंप्लायंस। हम ज्यादा सोचते नहीं, बस क्लिक विर मोड में चले जाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा चिंताजनक भी है ना?
बिल्कुल।
तीसरा, आपने बताया कि ये सिद्धांत किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये सार्वभौमिक है।
यूनिवर्सैलिटी।
हाँ, ये इंसानी फितरत और समाज के ताने बाने से जुड़े हैं। लेन देन का नियम हो, या अधिकार का सम्मान, या फिर दूसरों को देखकर सीखना, ये सब हर जगह पाया जाता है। शायद तरीके थोड़े अलग हों।
चौथा, ये जानना जरूरी है कि एक पूरा वर्ग है अनुपालन पेशेवरों का। मार्केटिंग, सेल्स, राजनीति, विज्ञापन, यहाँ तक कि धर्म और रिश्तों में भी, जिनका काम ही इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हमसे हाँ कहलवाना है। वो इन्हें जानते हैं और सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं।
और शायद सबसे अहम और उम्मीद जगाने वाला संदेश, जागरूकता ही बचाव है।
अवेयरनेस एज डिफेंस।
बिल्कुल। सियालिनी कहते हैं कि अगर हम इन तकनीकों को पहचानना सीख जाएं, जब वो हम पर इस्तेमाल हो रही हो, तो हम उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकल सकते हैं।
हाँ, हम एक पल रुककर सोच सकते हैं, रुको, यहाँ क्या हो रहा है, और फिर एक सोचा समझा फैसला ले सकते हैं। सिर्फ जानना ही काफी नहीं, उसे पहचानना और अमल करना जरूरी है।
किताब में कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे वो प्रयोग जिसमें लोगों ने लाइन तोड़ने की इजाजत सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि अनुरोध करने वाले ने क्योंकि शब्द का इस्तेमाल किया था,
हाँ।
भले ही उसके बाद का कारण एकदम बकवास था। क्या मैं जेरोक्स मशीन पहले इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉपी बनानी है?
है ना कमाल, ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे सिर्फ सिग्नल पकड़ता है, पूरी बात नहीं सुनता।
हाँ, ये तो कमाल है। और पारस्परिकता के बारे में ये सोचना कि ये कैसे बिना मांगे कर्ज पैदा कर सकती है, कोई आपको जबरदस्ती छोटा सा तोहफा देकर आप पर एहसान लाद सकता है।
सही। और अक्सर ये असमान लेन देन की ओर ले जाती है। छोटे से एहसान के बदले हम बड़ा काम कर बैठते हैं। ये तो रोजमर्रा में कितनी बार होता होगा।
बहुत बार।
सामाजिक प्रमाण पर सियालिनी का ये कहना भी सोचने लायक है कि चूंकि 95% लोग नकलची होते हैं और केवल 5% पहल करने वाले लोग, किसी भी सबूत की तुलना में दूसरों के कार्यों से ज्यादा प्रभावित होते हैं।
95% नकलची, ये आंकड़ा चौंकाता
है ना? और ये असर तब और बढ़ जाता है जब वो दूसरे लोग हमारे जैसे दिखते हों। हम अपने जैसों की नकल करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं।
और दुर्लभता के पीछे छिपे मनोविज्ञान को शायद ही एक पंक्ति सबसे अच्छे से बताती है। किसी चीज से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका ये महसूस करना है कि वो खो सकती है।
क्या बात है। खोने का डर पाने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर है। ये बात रिश्तों से लेकर चीजों तक सब पर लागू होती है।
तो ये सब जान लिया, अब सवाल ये है कि इस ज्ञान का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? इसका व्यावहारिक फायदा क्या है?
सबसे पहले तो एक उपभोक्ता के तौर पर हम ज्यादा सतर्क हो सकते हैं।
हाँ,
अगली बार जब कोई दुकान में मुफ्त चाय पिलाए या कोई लिमिटेड टाइम डील का लालच दे, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल सकती है। हम रुक कर पूछ सकते हैं, क्या मुझे ये चीज सच में चाहिए या मैं सिर्फ इस मनोवैज्ञानिक चाल में फंस रहा हूँ? हम तोहफा स्वीकार कर सकते हैं, पर एहसान महसूस किए बिना खरीदारी का फैसला ले सकते हैं।
ये हुई ना बात।
और पेशेवर जिंदगी में भी इसका सही इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में हैं, तो आप इन सिद्धांतों का नैतिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। झूठे दावे करने की बजाय संतुष्ट ग्राहकों के असली प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल्स, वो शेयर करें। सामाजिक प्रमाण।
हाँ,
ग्राहकों से छोटी सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं लें जो उनके मूल्यों से मेल खाती हों। प्रतिबद्धता। खुद को एक भरोसेमंद विशेषज्ञ के तौर पर स्थापित करें। अधिकार।
और नेतृत्व में भी ये काम आ सकता है ना, जैसे मैनेजर अपनी टीम को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार करने से पहले।
बिल्कुल। उनसे छोटे आसान कदम उठाने की प्रतिबद्धता ले सकते हैं और उसे सबके सामने जाहिर कर सकते हैं। प्रतिबद्धता। टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और समान लक्ष्य बनाकर आपसी पसंद, लाइकिंग को बढ़ाया जा सकता है।
निजी जिंदगी में भी इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है।
हाँ, क्यों नहीं। पेरेंटिंग में बच्चों को उनके कहे और किए के बीच संगति दिखाकर अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। रिश्तों में
पसंदगी के सिद्धांतों का ईमानदारी से इस्तेमाल करके, जैसे सामने वाले में सच्ची समानताएं ढूंढना या बिना मतलब की तारीफ करना, संबंधों को और गहरा बनाया जा सकता है।
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है आत्म जागरूकता,
सेल्फ अवेयरनेस।
बिल्कुल, हम अपने खुद के बेतुके या अतार्किक लगने वाले व्यवहार को बेहतर समझ सकते हैं। मैं उस पार्टी में क्यों गई जहां जाने का मन नहीं था, शायद पारस्परिकता या प्रतिबद्धता। मैंने वो ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदा जिसे मैं कभी पूरा नहीं करूंगा, शायद दुर्लभता या अधिकार का असर।
हाँ, ये समझ हमें भविष्य में ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने में मदद करती है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि हम शायद उतने तार्किक नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं।
सही कहा।
हमारे बहुत सारे फैसले स्वचालित, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दबावों से प्रभावित होते हैं। ये किताब उन दबावों को समझने के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल है। इसे पढ़कर लगता है जैसे हम अपने ही दिमाग के सॉफ्टवेयर को डिकोड कर रहे हों।
और मेरे लिए ये किताब एक तरह का स्वस्थ संदेह सिखाती है। अब हर मुफ्त चीज, हर एक्सपर्ट की सलाह, हर लिमिटेड ऑफर, वो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक संभावित मनोवैज्ञानिक चाल लगती है।
हाँ,
ये हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करती है। ये जानना कि प्रभाव कैसे काम करता है हमें न सिर्फ दूसरों को नैतिक रूप से समझाने में मदद करता है बल्कि खुद को चालाकी भरी तकनीकों से बचाने के लिए भी ताकत देता है।
बिल्कुल।
और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आज के डिजिटल युग में, जहां एल्गोरिदम और AI हमारी पसंद नापसंद को हमसे बेहतर जानते हैं, ये प्रभाव के सिद्धांत कितने ज्यादा शक्तिशाली और सूक्ष्म तरीकों से इस्तेमाल किए जा रहे होंगे या किए जा सकते हैं। ये एक नई चुनौती है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
बहुत सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज की चर्चा बहुत दिलचस्प रही।
हाँ बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए केत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।